एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम स्पेनिश साहित्य के एक ऐसे दिग्गज की दुनिया में जा रहे हैं जिनके बिना शायद आज कहानियों का रूप कुछ और होता, मिगुएल डी सर्वांतेस सावेंद्रा।
नमस्कार, बिल्कुल सही कहा आपने। सर्वांतेस, जिनका समय था 1547 से 1616, उन्हें अक्सर हम आधुनिक उपन्यास का पितामह भी कहते हैं।
हाँ, और उनकी वो कालजयी रचना डॉन के खोते, उसने तो जैसे साहित्य का नक्शा ही बदल दिया।
बिल्कुल, और उनका जो दौर था वो स्पेन के लिए बड़ा ही नाटकीय था। एक तरफ स्पेन दुनिया की महाशक्ति, और दूसरी तरफ मतलब अंदरूनी चुनौतियां भी थीं।
हाँ, ये शिब्लो दे ओरो, स्पेन का स्वर्ण युग, सुनने में तो बड़ा भव्य लगता है, पर क्या वाकई सब कुछ सोने का ही था उस दौर में?
देखिए, सोना तो था, खासकर जो अमेरिका से, न्यू वर्ल्ड से जो दौलत आ रही थी, स्पेन की फौजी ताकत, कला, साहित्य सब अपने चरम पर थे।
लेकिन कोई लेकिन भी था।
हाँ, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये था कि इतनी चमक दमक के पीछे देश गहरे कर्जे में भी डूबा था, और कैथोलिक चर्च का दबदबा, वो काउंटर रिफॉर्मेशन, उसकी वजह से समाज में एक तरह की सख्ती, एक कट्टरता भी बढ़ रही थी।
अच्छा, तो मतलब एक तरफ बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ कर्जा, सांस्कृतिक रौनक भी और विचारों पर पहरा भी।
बड़ा विरोधाभासी समय रहा होगा।
बिल्कुल, बहुत विरोधाभासी, यही घालमेल उस वक्त की खासियत थी।
आपने कहा विचारों पर पहरा, मतलब सेंसरशिप, इसका लेखकों पे, सर्वांतेस जैसे लोगों पर क्या असर पड़ता था?
असर तो पड़ता था, जाहिर है। काउंटर रिफॉर्मेशन की वजह से सेंसरशिप काफी कड़ी थी, मतलब कुछ भी छपने से पहले देखा जाता था कि कहीं वो चर्च या सत्ता के खिलाफ तो नहीं।
तो फिर लेखक कैसे लिखते थे? खुलकर तो कह नहीं पाते होंगे। नहीं, खुलकर कहना मुश्किल था, लेकिन यहीं पर क्या कहते हैं, लेखकों का हुनर सामने आया। सीधी आलोचना की जगह उन्होंने इशारों का, व्यंग्य का, कटाक्ष का इस्तेमाल करना सीखा, और सर्वांतेस इस कला में माहिर थे।
और उस समय की कोई बड़ी घटनाएं जिनका सर्वांतेस की जिंदगी या उनके लेखन पर सीधा असर पड़ा हो?
हाँ, कुछ खास बातें हैं। एक तो 1571 की लेपेंटो की लड़ाई बहुत बड़ी जीत थी स्पेन के लिए ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ,
और सर्वांतेस ने इसमें हिस्सा लिया था, है ना?
हाँ बिल्कुल, और बड़ी बहादुरी से लड़े भी थे। फिर 1588 में स्पेनिश आर्माडा की हार हुई इंग्लैंड के हाथों। हाँ, ये एक बड़ा झटका था स्पेन के लिए,
जिसने स्पेन के अजय होने के वहम को तोड़ा होगा।
बिल्कुल, तो ये सारी घटनाएं, उस दौर का सामाजिक तनाव, ये सब मिलकर सर्वांतेस की सोच और उनके लिखने की जमीन तैयार कर रहे थे।
उनके समकालीन कौन थे? लोपे डी वेगा का नाम आता है अक्सर।
हाँ, लोपे डी वेगा, वो उस वक्त नाटक के बादशाह माने जाते थे। सर्वांतेस और उनके बीच सम्मान भी था और थोड़ी प्रतिद्वंदिता भी, एक जटिल रिश्ता था दोनों का।
अच्छा, तो ये माहौल था जिसमें सर्वांतेस जी रहे थे, लिख रहे थे। अब जरा उनके शुरुआती जीवन पर आते हैं। कहाँ जन्म हुआ, बचपन कैसा था?
उनका जन्म हुआ अल्काला डे हेनारेज में 1547 में। परिवार हिडाल्गो था, मतलब छोटे दर्जे का कुलीन वर्ग, पर पैसे की तंगी रहती थी।
पिता क्या करते थे?
उनके पिता रोड्रिगो डी सर्वांतेस एक हज्जाम सर्जन थे। उस जमाने में ये दोनों काम अक्सर एक ही व्यक्ति करता था। पिता पर कर्ज रहता था, तो बचपन में परिवार को काफी घूमना पड़ा, जगह बदलनी पड़ी।
शायद इसी वजह से उन्हें स्पेन को करीब से देखने का मौका मिला होगा, अलग अलग लोगों को, समाज को।
हाँ, ये मुमकिन है। इस भटकाव ने उन्हें जिंदगी के कई रंग दिखाए होंगे।
और उनकी शिक्षा दीक्षा, क्या वो कॉलेज वगैरह गए?
इसकी कोई पक्की जानकारी नहीं मिलती, पर यह माना जाता है कि मैड्रिड में हुआन लोपेज डी होयोस नाम के एक मानवतावादी विद्वान थे, शायद उनके छात्र रहे हों, वहीं से साहित्य में रुचि जगी होगी।
फिर वो अचानक इटली कैसे पहुंच गए और फौज में भर्ती क्यों हुए?
इसके पीछे कहानी है। कहते हैं 1569 के आसपास मैड्रिड में कोई झगड़ा हुआ, शायद द्वंद्व युद्ध, जिसमें उनका नाम आया, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्हें स्पेन छोड़कर इटली जाना पड़ा।
अच्छा।
हाँ, और इटली उस वक्त पुनर्जागरण का केंद्र था, कला, साहित्य, वहां का माहौल ही अलग था। उसने सर्वांतेस पर गहरा असर डाला होगा, और फिर शायद रोमांच की तलाश में या देशभक्ति के जज्बे से वो स्पेनिश नौसेना में भर्ती हो गए,
और यहीं से वो लेपेंटो की लड़ाई वाला किस्सा जुड़ता है।
हाँ,
जहाँ वो घायल हुए थे।
बिल्कुल, 1571 की लेपेंटो की लड़ाई, ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। बहुत दिलेरी से लड़े, 3 गोलियां लगी उन्हें, 2 सीने में, एक बाएं हाथ में।
और उसी चोट से उनका बायां हाथ?
हाँ, बायां हाथ हमेशा के लिए बेकार हो गया। इसी वजह से उन्हें एल मांको दे लेपेंटो यानी लेपेंटो का एक हाथ वाला कहा जाने लगा। पर वो इसे शर्मिंदगी नहीं बल्कि एक सम्मान की तरह देखते थे।
गजब की हिम्मत थी। लेकिन उनकी मुश्किलें शायद यहीं खत्म नहीं हुई। वो समुद्री डाकुओं वाली कहानी क्या है?
हाँ, वो एक और नाटकीय मोड़ था उनकी जिंदगी में। 1575 में जब वो इटली से स्पेन लौट रहे थे तो बारबरी समुद्री डाकुओं ने उनके जहाज पर हमला कर दिया
और उन्हें पकड़ लिया।
हाँ, पकड़कर अल्जीयर्स ले गए। वहां पूरे 5 साल उन्होंने गुलामी में बिताए। सोचिए, एक युद्ध का नायक, अब गुलाम।
5 साल बहुत लंबा अरसा है।
बहुत लंबा। लेकिन वहां भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 4 बार भागने की कोशिश की, नाकाम रहे। कहते हैं उनकी इस दिलेरी से डाकू भी प्रभावित थे। आखिरकार 1580 में उनके परिवार ने फिरौती देकर उन्हें छुड़ाया। ये 5 साल का अनुभव, उन्होंने इंसानी फितरत को बहुत करीब से देखा होगा।
स्पेन लौटने पर क्या हुआ? क्या उनका हीरो की तरह स्वागत हुआ?
अफसोस की बात है, ऐसा नहीं हुआ। एक घायल फौजी के लिए उस वक्त स्पेन में मौके बहुत कम थे। उन्होंने नाटक लिखने की कोशिश की पर लोपे दी वेगा जैसी कामयाबी नहीं मिली।
तो गुजारा कैसे चलता था?
गुजारे के लिए सरकारी नौकरी करनी पड़ी। पहले स्पैनिश आर्माडा के लिए रसद सप्लाई करने वाले अफसर बने, फिर टैक्स कलेक्टर। पर ये नौकरियां भी उनके लिए मुसीबत ही लाईं।
मुसीबत मतलब जेल जाने की बात भी सुनी है मैंने।
हाँ, हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ी के आरोप लगे। कम से कम 2 बार उन्हें जेल जाना पड़ा। अभी उनकी बेईमानी थी या उस वक्त की सरकारी व्यवस्था की उलझने, ये कहना मुश्किल है। पर संघर्ष बहुत था उनके जीवन में।
निजी जीवन कैसा था? शादी हुई?
हाँ, उनकी शादी हुई कैटालिना डी सालाजार से। इससे जीवन में थोड़ी स्थिरता आई। शादी से पहले एना फ्रैंकाडी रोजास से भी उनका रिश्ता था, जिनसे उनकी एक बेटी हुई इजाबेल।
तो इतने सारे उतार चढ़ाव, नाकामियां, फिर वो बड़ी कामयाबी कैसे मिली जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया?
ये कामयाबी मिली बहुत देर से। शायद तब मिली जब वो खुद भी उम्मीद छोड़ चुके हों। 1605 में जब वो करीब 58 साल के थे तब उनकी किताब डॉन की खोते का पहला भाग छपा।
और वो चल निकली?
चल निकली नहीं, दौड़ पड़े। रातों रात वो मशहूर हो गए। पूरे स्पेन में, फिर यूरोप में धूम मच गई। लेकिन मजे की बात यह है कि इस शोहरत से उन्हें पैसा ज्यादा नहीं मिला।
अच्छा, ये तो अजीब बात है, फिर दूसरा भाग क्यों लिखना पड़ा?
ये भी एक दिलचस्प किस्सा है। पहले भाग की जबरदस्त कामयाबी को देखकर 1614 में किसी अलोंजो फर्नांडिस दी अवेलेनेडा नाम के आदमी ने, जो शायद असली नाम भी ना हो, डॉन की होते का एक नकली सीक्वल छाप दिया।
अरे
हाँ, जाहिर है सर्वांतेस को बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने फौरन अपना असली दूसरा भाग लिखा जो 1615 में आया। और कई आलोचक मानते हैं कि दूसरा भाग तो पहले से भी ज्यादा गहरा और कलात्मक है।
कमाल है, मतलब नकली ने असली को और बेहतर बना दिया,
एक तरह से कह सकते हैं। और उनका अंत कैसे हुआ?
उनका निधन हुआ मैड्रिड में 22 अप्रैल 1616 को। कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज थी। और क्या इत्तेफाक है, इंग्लैंड में शेक्सपियर की मौत भी लगभग उसी दिन 23 अप्रैल हुई थी।
हाँ, ये बड़ा मशहूर संयोग है।
और मरते दम तक वो लिख रहे थे।
बिल्कुल। अपनी आखिरी किताब लॉस ट्राबाखोस दे पर्सिलेस वाई सिगिसमुंडा, उसका समर्पण उन्होंने मौत से बस कुछ दिन पहले ही पूरा किया था।
चलिए अब उनकी रचनाओं पर थोड़ी और बात करते हैं। डॉन की खोते तो है ही, पर उसके अलावा उन्होंने और क्या क्या लिखा?
हाँ, डॉन की खोते के अलावा भी उनका काम महत्वपूर्ण है। उनका पहला छपा हुआ उपन्यास था ला गलाटिया 1585 में। ये उस जमाने में जो चलन था पेस्टोरल रोमांस का, यानी गड़ेरियों की प्रेम कहानियों का, उस शैली में था। पर उसमें भी आगे के सर्वांतेस की झलक मिलती है, किरदारों के मनोविज्ञान और समाज पर नजर।
और फिर वो नोवेलास अहम प्लारिस, अनुकरणीय कहानियां।
हाँ, वो 1613 में आई, 12 छोटी कहानियों का संग्रह। इसमें उनकी रेंज दिखती है, अलग अलग तरह की कहानियां हैं।
कोई खास कहानी उसमें से जिसका जिक्र करना चाहें?
एक है रिंकोनेते वाई कुर्तादियो। ये सिवला शहर के 2 छोटे चोरों की कहानी है। ये उस वक्त जो पिकारेस्क नॉवल चलते थे, धूर चरित्रों वाले, उस तरह की है। पर सर्वांतेस उसमें भी किरदारों को एक मनोवैज्ञानिक गहराई देते हैं।
और इन्हें अनुकरणीय क्यों कहा? क्या ये नैतिक उपदेश देती थीं?
अनुकरणीय का मतलब यहां सिर्फ नैतिक उपदेश नहीं है। सर्वांतेस का मानना था कि कहानियां मनोरंजन तो करें पर साथ ही कुछ सोचने पर भी मजबूर करें, जिंदगी के बारे में कुछ सिखाएं। पर यह सीधा सीधा उपदेश नहीं था, बल्कि कहानी के जरिए दिखाया गया सच था।
समझ गई। अब आते हैं उस महाग्रंथ पर, डॉन की खोते। इसने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि साहित्य में क्रांति आ गई?
डॉन की खोते ने कहानी कहने का तरीका ही बदल दिया। प्लॉट तो सीधा सा है, जैसे हमने बात की, एक भला आदमी अलोंसो किसानो पुरानी शूरवीरों की कहानियां पढ़ पढ़कर क्या कहते हैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है।
हाँ, और खुद को नाइट समझने लगता है, डॉन के खोते।
बिल्कुल, और निकल पड़ता है दुनिया सुधारने, अपनी कल्पना की दुनिया में। साथ में है उसका साथी सांचो पांजा, जो एकदम जमीनी आदमी है, किसान है।
पर इसकी खासियत क्या है? ये सिर्फ एक पागल आदमी की कहानी तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किताब कई सतहों पर काम करती है। एक लेवल पर ये उन पुरानी घिसी पिटी शूरवीर गाथाओं का मजाक उड़ाती है, उनकी पैरोडी है।
अच्छा।
दूसरे लेवल पर ये उस वक्त के स्पेन का बड़ा ही सच्चा यथार्थवादी चित्र पेश करती है। और सबसे अहम, ये कल्पना और हकीकत, आदर्शवाद और दुनियादारी के बीच जो टकराव है, उस पर एक गहरा दार्शनिक चिंतन है।
ये सवाल कि कहानियां हमारी जिंदगी को कैसे देखती हैं, कैसे बदलती हैं।
हाँ बिल्कुल, हमारी पहचान कैसे बनती है? क्या हम वही हैं जो हम सोचते हैं कि हम हैं, या जो दुनिया हमें समझती है? इन सब सवालों को ये किताब छूती है।
और लिखने के अंदाज में क्या नयापन था? आपने मेटाफिक्शन की बात की थी, वो क्या चीज है?
मेटाफिक्शन?
हाँ, ये बहुत ही दिलचस्प चीज है।
मतलब जब कहानी खुद अपने कहानी होने पर बात करने लगे, जैसे डॉन की खोते के दूसरे भाग में, डॉन की खोते और सांचो पांजा को ये पता है कि उनके कारनामों पर एक किताब छप चुकी है।
सच में?
हाँ, और लोग उसे पढ़ रहे हैं। वो ऐसे लोगों से मिलते हैं जिन्होंने उनके बारे में पढ़ा है। सोचिए, उस जमाने के लिए कितना नया, कितना आधुनिक विचार था।
ये तो वाकई कमाल है, जैसे कोई फिल्म का किरदार टीवी से बाहर आ जाए।
कुछ वैसा ही समझ लीजिए, ये पाठक और कहानी के रिश्ते पर, कल्पना और असलियत के रिश्ते पर सवाल खड़े करता है।
तो दूसरा भाग पहले से ज्यादा गहरा माना जाता है?
हाँ, कई लोग ऐसा मानते हैं। उसमें मेटाफिक्शन का इस्तेमाल और ज्यादा खुलकर हुआ है। माहौल भी थोड़ा ज्यादा संजीदा है, थोड़ा मोहभंग वाला। जिंदगी, मौत, इन सब पर ज्यादा चिंतन है। और हाँ, वो जो नकली सीक्वल आया था अवेलेनेडा का, ये उसका भी एक तरह से जवाब था।
और वो आखिरी किताब पर्सिलिस वाय सिगिज़मुंडा, जिसे वो खुद अपनी बेस्ट मानते थे?
जी, लोस त्रबाहोस दी पर्सिलिस वाय सिगिज़मुंडा। ये उनकी मौत के बाद 1617 में छपी। ये बहुत लंबी, थोड़ी जटिल कहानी है, बाइजेंटाइन रोमांस की शैली में। दो प्रेमी हैं जो बहुत सारे देशों में घूमते हैं, अजीब अजीब एडवेंचर करते हैं।
इसमें धर्म, संस्कृति सब कुछ है?
हाँ, सब कुछ है। ये उनकी महत्वाकांक्षा दिखाती है। हालांकि ये डॉन के खोते जितनी पॉपुलर नहीं हुई, उन्होंने नाटक भी लिखे थे। ओचो कॉमेडियाज वाई ओचो एंट्रेमेसिस नाम से संग्रह छपा, पर थिएटर में उन्हें लोपे डी वेगा जैसी सफलता नहीं मिली। शायद उनके नाटक किरदारों के मन की उलझनों पर ज्यादा फोकस करते थे, जो उस वक्त के मंच के लिए शायद कम नाटकीय लगते हों।
तो अगर हम सर्वांतेज के मुख्य योगदानों को समेटना चाहें, तो क्या कहेंगे? साहित्य को उन्होंने क्या दिया?
देखिए, सबसे पहली बात तो यही कि उन्होंने आधुनिक उपन्यास की नींव रखी। कहानी को सिर्फ मनोरंजन या उपदेश से उठाकर इंसान के होने, उसके वजूद से जुड़े सवालों को खंगालने का माध्यम बनाया।
और उनके किरदार डॉन के खोते और सांचो पांजा।
हाँ, उनके किरदार, वो स्थिर नहीं हैं, वो बदलते हैं, विकसित होते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। डॉन की खोटे शुरू में पूरी तरह कल्पना में जीता है, सांचो एकदम व्यवहारिक है, पर धीरे धीरे दोनों पर एक दूसरे का असर पड़ता है। ये जोड़ी आज भी साहित्यिक किरदारों के लिए एक मिसाल है।
लिखने की तकनीक में मेटाफिक्शन के अलावा और क्या खास था?
मेटाफिक्शन के अलावा पॉलीफोनी का इस्तेमाल, यानी बहुस्वरता। एक ही कहानी में कई तरह की आवाजें, कई नजरिए, कई शैलियां एक साथ ले आना, बिना किसी एक को सही ठहराए, पाठक को सोचने पर मजबूर करना।
और डायलॉग्स?
संवाद, कमाल के डायलॉग्स। भाषा से ही पता चल जाता है कि कौन बोल रहा है, उसका समाज में क्या स्थान है, उसकी सोच कैसी है। कि खोते की वो पुरानी किताबी भाषा और सांचो की वो देहाती कहावतें, दोनों का जो कॉन्ट्रास्ट है वो अद्भुत है।
मतलब उन्होंने उपन्यास को सिर्फ कहानी नहीं रहने दिया, बल्कि उसे सोचने का, दुनिया को देखने का एक औजार बना दिया।
बिल्कुल सही।
समझदारी क्या है, पागलपन क्या है, हमारी पहचान कैसे बनती है, विश्वास की ताकत क्या होती है, साहित्य हमारी दुनिया की समझ को कैसे बनाता बिगाड़ता है, इन सब बड़े सवालों से वो अपनी कहानियों में जूझते हैं।
और ये सब करते हैं एक ऐसी भाषा में जो है तो साहित्यिक, पर आम पाठक की पहुंच में भी है, जिसमें हास्य भी है और गहरी उदासी भी।
डॉन के खोते का असर कैसा रहा दुनिया पर? क्या इसे हाथों हाथ लिया गया?
अरे बिल्कुल, हाथों हाथ। डॉन के खोते की कामयाबी फौरन मिली और जबरदस्त थी। स्पेन में तो हिट हुई ही, देखते देखते पूरे यूरोप में इसके अनुवाद होने लगे, अंग्रेजी में, फ्रेंच में, इतालवी में, सब भाषाओं में। उस जमाने के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात थी।
लेकिन क्या लोग इसे शुरू से ही एक गहरी दार्शनिक रचना के तौर पर देख रहे थे?
नहीं, शुरू में नहीं। शुरू में तो ज्यादातर लोगों ने इसे एक मजेदार किताब समझा, शूरवीरों की कहानियों का मजाक, डॉन के खोते की बेवकूफियां, सांचो की बातें। लोग हंसते थे।
अच्छा, मतलब पहले से कॉमेडी समझा गया।
हाँ, मुख्य रूप से कॉमेडी या व्यंग्य। फिर 18वीं सदी आई, प्रबोधन का युग। तब वॉल्टेयर जैसे विचारकों ने इसके यथार्थवाद और सामाजिक आलोचना की तारीफ की। फील्डिंग, स्टर्न जैसे अंग्रेजी उपन्यासकारों पर इसका असर पड़ा।
और 19वीं सदी में?
19वीं सदी में रोमांटिसिज्म के दौर में इसकी व्याख्या बदली। तब लोगों ने डॉन किखोते को सिर्फ एक मजाकिया पागल नहीं, बल्कि एक दुखद नायक के रूप में देखा, एक आदर्शवादी जो इस बेरहम भौतिकवादी दुनिया से टकराकर हार जाता है। फ्लॉबेर्ट, दोस्तोयेवस्की जैसे बड़े लेखकों ने इसे सिर आंखों पर बिठाया। दोस्तोयेवस्की ने तो इसे इंसानी दिमाग की आखिरी और सबसे महान अभिव्यक्ति तक कह दिया।
वाओ, और आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है?
आज तो उन्हें मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म का अग्रदूत माना जाता है। बोर्खेस, कुंदेरा, रश्दी जैसे लेखक उनके मेटाफिक्शन, उनकी बहुस्वरता, इन सब तकनीकों से बहुत प्रभावित रहे हैं।
और वो शब्द क्विजोटिक।
हाँ, क्विजोटिक, ये शब्द तो अब दुनिया भर की भाषाओं में शामिल हो गया है। इसका मतलब है ऐसा आदर्शवाद जो शायद अव्यवहारिक हो पर हो नेक नियति से भरा। उनकी कहानी आज भी उतनी ही मौजू लगती है, खासतौर पर आज के इस दौर में जहां सच और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है।
उस जमाने में तो आज की तरह साहित्य के लिए पुरस्कार वगैरह नहीं होते थे, तो सर्वांतेस को किस तरह का सम्मान मिला अपने जीवन काल में?
सही कहा आपने, आज जैसे नोबेल या बुकर तो थे नहीं। तब कामयाबी का पैमाना होता था किताबों की बिक्री, दूसरे लेखकों से मिलने वाली इज्जत और किसी अमीर या कुलीन व्यक्ति का संरक्षण, जिसे पेट्रोनेज कहते हैं।
तो डॉन किखोते की लोकप्रियता ही सबसे बड़ा इनाम थी?
बिल्कुल, वही सबसे बड़ा सम्मान था। उन्हें काउंट ऑफ लिमोज जैसे कुछ रईसों का संरक्षण मिला जरूर, पर उससे कोई बहुत ज्यादा आर्थिक मदद नहीं मिली। और हाँ, वो जो नकली सीक्वल छपा था अवेला नेडा का, वो भी एक अजीब तरह का सम्मान ही था। ये बताता था कि उनकी रचना कितनी महत्वपूर्ण हो चुकी थी।
लेकिन असल पहचान तो शायद बाद में ही मिले।
हाँ, ज्यादातर महान लेखकों की तरह असली और स्थायी पहचान उन्हें मरणोपरांत ही मिली।
उनकी कुछ मशहूर पंक्तियां हैं जो आज भी दोहराई जाती हैं।
हाँ, कई हैं। जैसे डॉन किखोते के पागलपन का कारण बताते हुए वो लिखते हैं, आखिरकार बहुत कम सोने और बहुत ज्यादा पढ़ने से उनका दिमाग सूख गया और वो पूरी तरह पागल हो गए। ये साहित्य के असर पर, उसके खतरे पर एक तरह की टिप्पणी है।
और वो कलम वाली बात?
हाँ, कलम मन की जबान है, यानी लिखना सिर्फ शब्दों को कागज पर उतारना नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है।
सांचो पांजा की भी कोई ऐसी ही यादगार बात?
सांचो की दुनियादारी और जमीनी समझ उसकी बातों में खूब झलकती है। जैसे वो कहता है, दुनिया में बस दो ही खानदान है, मेरी दादी कहती थी, एक जिनके पास है और दूसरा जिनके पास नहीं है। सीधा सपाट सामाजिक यथार्थ।
कोई और रोचक तथ्य या किस्सा उनके बारे में?
एक तो वो शेक्सपियर वाली बात है ही कि दोनों की मौत लगभग एक ही दिन हुई। फिर वो एल मानको डी लेपेंटो वाला उपनाम, और ये भी कहा जाता है, पता नहीं कितना सच है, कि डॉन किखोते लिखने का आइडिया उन्हें जेल में आया था।
और इसके रूपांतरण फिल्मों वगैरह में?
अरे, अनगिनत रूपांतरण हुए हैं, संगीत में, बैले में, नाटक में, फिल्मों में। मैन ऑफ लामांचा नाम का म्यूजिकल प्ले बहुत मशहूर हुआ, जिसने डॉन किखोते की रोमांटिक छवि को और पक्का किया। कई बार ये रूपांतरण किताब की सारी जटिलता, उसके व्यंग और मेटाफिक्शन को पूरी तरह पकड़ नहीं पाते, पर ये इस बात का सबूत है कि ये कहानी आज भी लोगों को खींचती है।
वाकई सर्वांतेस का जीवन भी और उनका काम भी दोनों ही असाधारण है। ऐसा लगता जैसे उन्होंने कहानी कहने के मायने ही बदल दिए।
बेशक, उन्होंने हमें ये दिखाया कि कहानियां सिर्फ वक्त गुजारने का साधन नहीं है, वो दुनिया को समझने, उस पर सवाल उठाने और शायद उसे थोड़ा बेहतर बनाने का सपना देखने का भी जरिया हो सकती हैं।
तो आज की इस बातचीत से हमारे सुनने वालों के लिए सोचने का सूत्र क्या छोड़े हम?
सर्वांतेस ने अपनी कहानियों में असलियत और कल्पना, समझदारी और पागलपन के बीच की उस महीन सी रेखा को बार बार टटोला। आज की हमारी दुनिया देखिए, खबरों से, सोशल मीडिया की कहानियों से, अलग अलग नैरेटिव से भरी पड़ी है।
हाँ बिल्कुल, सच क्या है, कल्पना क्या है, ये तय करना मुश्किल होता जा रहा है।
तो सवाल ये उठता है कि आज हम जो पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, वो हमारी हकीकत को, हमारी दुनिया की समझ को कैसे गढ़ रहा है? शायद यही सवाल सर्वांतेस आज होते तो हमसे पूछते।
जरूर, सोचने वाली बात है। इस बहुत ही दिलचस्प और गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।